और उसी पल नूर की खुशबू जैसे रिहान के अंदर तक उतर गई। वो कुछ सेकंड के लिए वहीं ठहर गया। चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसे कुछ मिल गया हो। असल में रिहान की दीवानगी नूर के प्रति बढ़ने लगी थी और बहुत जल्दी वो नूर को परेशानी में डालने वाला था। सिर्फ नूर को नहीं, पूरी फैमिली को। जिस बेटे पर रिहाना बेगम को इतना गुमान था, वो गुमान भी बहुत जल्दी टूट जाएगा। और सादिया, जिसे लगता है कि उसका शौहर उसे बहुत चाहता है, उसकी बहम भी दूर हो जाएगा। बाकी सब लोग अपनी बातों में मशगूल थे, किसी ने उसके चेहरे का वो बदलता रंग नहीं देखा। नूर गुस्से में अपने कमरे में आई और आते ही अपनी पायल उतारने लगी। उधर अरमान घर जाने के लिए उठा, लेकिन हॉल से बाहर निकलने की बजाय सीधे नूर के कमरे की तरफ चला गया। उसे पता था नूर गुस्से में है और सबसे पहले वही पायल उतारेगी। कमरे में पहुंचते ही उसने देखा नूर जोर जोर से पायल खींच रही थी। क्या कर रही हो तुम? अरमान ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। उतार रही हूं, दिख नहीं रहा? नूर ने गुस्से में जवाब दिया, उसकी तरफ देखे बिना। इतना गुस्सा? ऐसे खींचोगी तो पायल टूट जाएगी और तुम्हें भी लग सकती है, अरमान ने नरमी से कहा। मेरी मर्जी, मेरा पैर है, आपको क्या? नूर ने झुंझलाकर कहा। अरमान हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हें लगेगी तो मेरा भी तो नुकसान होगा ना? हाँ, सही कहा, अगर पायल टूट गई तो आपका नुकसान हो जाएगा। नूर ने बात को अलग ही मतलब में ले लिया। नूर, प्लीज, ऐसी बातें क्यों करती हो? नाराज हूं मानता हूं, लेकिन बात तो सही तरीके से करो, अरमान अब उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। दोनों कमरे में खड़े बात कर रहे थे, तभी बाहर से गुजरती हुई सादिया उनकी आवाज सुनकर रुक गई। वो चुपचाप दरवाजे के पास खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी। मेरी बातों का गलत मतलब मत निकाला करो, अरमान ने समझाते हुए कहा। मेरे पास आपकी बातों के लिए टाइम नहीं है, नूर ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। मेरी बातों के लिए टाइम नहीं है, लेकिन कल तुमने मेरे सामने फैजान की साइड लेने के लिए टाइम निकाल लिया था, अरमान की आवाज में फिर से गुस्सा आ गया। क्योंकि वो सही था, नूर तुरंत बोली। ओ, तो अब तुम्हें बहुत फर्क पड़ने लगा है उससे, अरमान ने तंज कसा। हर किसी को ऐसा नहीं लगा, नूर ने पलट कर कहा। रेहान भाई कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो तुम्हारी बात काटना नहीं चाहते थे। तुम इस घर की मेहमान हो, इसका मतलब ये नहीं कि फैजान ने चोरी नहीं की, अरमान अब साफ साफ बोल रहा था। ज्वेलरी अभी भी गायब है और फैजान भी घर छोड़कर चला गया, इसका मतलब क्या है समझ रही हो ना? उसने ठंडी आवाज में कहा। नूर चुप हो गई। वो सच्चाई जानती थी, लेकिन बता नहीं सकती थी। उसके पास जो पैसे थे, वो कहां से आए, ये राज अभी खुल नहीं सकता था। दरवाजे के बाहर खड़ी सादिया ये सब सुनकर गुस्से से भर गई। उसने सब गलत समझ लिया। नूर और अरमान की बात सुनकर सादिया का गुस्सा और बढ़ गया। बिना देर किए उसने तुरंत फैजान को फोन लगाया। फोन उठते ही उसने कहा, तुम सच में चले गए फैजान? हाँ, मैं चला गया। फैजान की आवाज शांत थी, वो इस वक्त ट्रेन में बैठा था। मुझे दूसरों से पता चल रहा है कि तुम चले गए, कम से कम मुझसे बात तो कर लेते, सादिया ने शिकायत भरे लहजे में कहा। फैजान हल्का सा हंसा। मेरे बारे में तुम्हें हमेशा दूसरों से ही पता चलता है, क्योंकि तुम कभी अपनी गलती मानते ही नहीं, सादिया झुंझलाकर बोली। ठीक है, ये सब छोड़ो, बताओ फोन क्यों किया? फैजान ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। यहाँ सब लोग तुम्हें चोर समझ रहे हैं और तुम ऐसे ही चले गए। अब तो लोगों को और भी यकीन हो गया है कि चोरी तुमने ही की है, सादिया ने गुस्से में कहा। कुछ पल के लिए चुप्पी छा गई, फिर फैजान ने गंभीर होकर पूछा, और तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में? सादिया चुप रह गई, फिर बोली, मैं क्या सोचूं, तुम बिना कुछ कहे चले गए, मैं तो ठीक से बात भी नहीं कर पा रही, तुमने मेरे लिए छोड़ा ही क्या है कहने को? उसकी आवाज में गुस्सा भी था और दर्द भी। तो एंजॉय करो ये सब, फैजान ने ठंडे लहजे में कहा, जैसे वो इस बात को बढ़ाना ही नहीं चाहता था। और प्लीज अपना बीबी मत बढ़ाओ। फैजान, सादिया ने उसे रोका, अब तक ज्वेलरी नहीं मिली है, उसने फिर कहा। तो, फैजान झुंझलाया, जब तक ज्वेलरी नहीं मिलती तुम वापस आ जाओ, सादिया ने लगभग आदेश देते हुए कहा। फैजान की आवाज इस बार सख्त हो गई। मुझे मेरी जिंदगी की थोड़ी परवाह है, और सच कहूं तो मैं इस घर में अब किसी की शक्ल नहीं देखना चाहता, इतना कहकर उसने फोन काट दिया। नौकरानी रेहान और सादिया के कमरे की सफाई कर रही थी। जैसे ही उसने बेड के नीचे झाड़ू लगाया, उसे कुछ चमकता हुआ दिखा। वो झुककर देखती है, वहीं झुमके पड़े थे, वही झुमके जिनकी चोरी का इल्जाम फैजान पर लगा था। नौकरानी तुरंत उन्हें उठाकर रेहाना बेगम के पास ले आई। हॉल में रेहाना बेगम, सादिया और नूर मौजूद थीं। बेगम साहिबा, ये झुमके मुझे सादिया बीबी के कमरे के बेड के नीचे मिले हैं, नौकरानी ने कहा। क्या? सादिया चौंक गई। मुझे नहीं पता अम्मी, ये वहां कैसे आए, उसने घबरा कर कहा। उसी वक्त थोड़ी दूर खड़ा रेहान फोन पर बात कर रहा था, लेकिन उसकी नजर सीधे झुमकों पर जा टिकी। नूर भी वहीं खड़ी थी, उसकी नजरें भी झुमकों पर जम गईं। क्या हुआ? रेहान आगे आया, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। रेहाना बेगम ने झुमके उसकी तरफ बढ़ाए। ये वही झुमके हैं, पूरे सेट के साथ वाले, और ये सादिया के कमरे के बेड के नीचे मिले हैं, जिनकी वजह से फैजान को ये घर छोड़कर जाना पड़ा। उनकी आवाज में हैरानी भी थी और गुस्सा भी। अम्मी, मैंने पूरा कमरा चेक किया था, उस वक्त वहां कुछ नहीं था, सादिया ने झुंझलाकर कहा। तो आप कैसे आ गए? रिहाना बेगम ने सख्ती से पूछा। उन्होंने नौकरानी की तरफ देखा। तुम जा सकती हो। नौकरानी वहां से चली गई। मॉम छोड़िए ना, चीज मिल गई यही काफी है, रिहान ने बात संभालते हुए कहा। उसकी आवाज शांत थी लेकिन खेल उसी का रचा हुआ था। सादिया जो अभी तक नूर पर सवाल उठा रही थी अब खुद सवालों के घेरे में खड़ी थी। रिहान ने ये सब नूर के लिए किया था और जो इंसान उसके लिए इतना बड़ा खेल खेल सकता है वो आगे क्या करेगा। तभी अरमान वहां आया। वो पूरी बात सुन चुका था। क्या बात है, आज तो लॉस्ट एंड फाउंड चल रहा है। पहले चेन मिली, अब झुमके भी मिल गए, उसने हल्के तंज के साथ कहा। पहले ये तो पूछो कि मिला क्या है, नूर ने सीधे उसकी तरफ देखते हुए कहा। वो जानबूझकर ऐसा बोल रही थी क्योंकि अरमान ने फैजान को चोर कहा था। तो क्या मिला है, अरमान ने पूछा। रिहाना बेगम ने झुमके आगे कर दिए। ये सादिया के कमरे से मिले हैं। अरमान हैरान रह गया। मैंने कहा था ना, फैजान ने चोरी नहीं की, नूर ने धीमे लेकिन साफ लहजे में कहा। रिहान ने झुमके उठाकर सादिया के हाथ में रख दिए। नूर के चेहरे पर हल्की सी राहत आ गई। थैंक यू, नूर ने रिहान से कहा, क्योंकि रिहान ने नूर और फैजान का साथ दिया था। रिहान मुस्कुरा दिया। नूर की मुस्कान उसके लिए काफी थी। अरमान चुप था, परेशान भी और थोड़ा शर्मिंदा भी। उसे एहसास हो रहा था कि उसने नूर से बेवजह लड़ाई की। सादिया वहीं खड़ी थी, टूटी हुई, उलझी हुई। उसने अपने ही भाई का साथ नहीं दिया था। धीरे धीरे सब अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक नया तूफान शुरू हो चुका था। पूरा दिन गुजर गया था लेकिन नासिर खान से किसी की भी बात नहीं हो पाई थी। जुबैदा बेगम बेहद परेशान थी। उन्होंने कई बार फोन मिलाया लेकिन हर बार फोन या तो बचता रह जाता या फिर कट जाता। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, वो खुद से ही बड़बड़ा थी। आखिर उन्होंने अरमान को बुलाया। तुम्हारे दादा से बात हुई, उन्होंने बेचैनी से पूछा। नहीं मॉम, मेरी भी बात नहीं हो पाई, अरमान ने गंभीर होकर जवाब दिया। अब उसके चेहरे पर भी चिंता साफ दिख रही थी। ये कैसे हो सकता है, जुबैदा बेगम की घबराहट बढ़ने लगी। वो कभी फोन इग्नोर नहीं करते। घर का माहौल धीरे धीरे भारी होने लगा था। अरमान भी अब सोच में पड़ गया। आखिर ऐसा क्या हुआ है जो नासिर खान फोन तक नहीं उठा रहे।
उम्मीद करती हूँ मेरी ये सीरीज आपको पसंद आ रही हो। प्लीज मेरी सीरीज पर कॉमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कॉमेंट में बताएं।